ये ओमकार मंत्र का मैं जप करता हूं, जिसके खोजने वाले भगवान नारायण है। भगवान नारायण ने बनाया नहीं है, खोजा है। इसके पहले था नारायण, अवतारों के पहले, नारायण जी के पहले था। ये ओमकार मंत्र मूल गायत्री है, उस ब्रह्म की स्वाभाविक स्फुरना है ध्वनि। अथ ओमकार मंत्र गायत्री छंद। परमात्मा ऋषि ही खोजने वाले भगवान नारायण, और इसका देवता है सर्व अंतस्युत अंतर्यामी परमात्मा, इसका देवता है। मैं आत्म शांति के लिए, प्रभु प्रीति के लिए, प्रभु माधुर्य के लिए आज जप करता हूं। ओम 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 ओम। कम से कम 6 मिनट करना, ऐसा कोई आसन बिछाना जिससे ये जप करने से जो आपकी ओरा बनेगी, बिजली बनेगी, उसको अर्थिंग ना मिले। 6 मिनट कम से कम, ज्यादा जितना भी करें। जप किया होठों से, 6 मिनट कंठ से, 6 मिनट हृदय से, और 6 मिनट और शांति। हम ओम स्वरूप ईश्वर में शांत हो रहे। फिर 6 मिनट आप लेट जाएं, अथवा ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़ें, अथवा ईश्वर स्तुति जहां ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है, ऐसी छोटी सी आश्रम की पुस्तक पढ़ें, शांत हो जाए। ऐसे करते करते दिन में ऐसा कोर्स आप कई बार कर सकते हैं, और 6 मिनट की जगह पे 8-8 मिनट का करिए, 10-10 मिनट का करिए, 15-15 मिनट का करिए। कल का दिन आप खूब कमाई करिए। इस कमाई की बराबरी 1,00,000,000,000 रुपयों से नहीं की जा सकती, इतना लाभ। फिर थोड़ा आरोग्य स्वास्थ्य के लिए मंत्र जप कर लीजिए। श्वास अंदर भरिए, 1.25 मिनट रोकिए और जप करिए, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। जप की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं, श्वास रोक के रखें, पेट को अंदर करे रखें, नाभि से नीचे के हिस्से को संकोच के रख ले। इससे आपकी नाजायज कामनाएं, नाजायज संकल्प, नाजायज वासनाएं नियंत्रित करने की शक्ति आपकी जगेगी। 1,000 जन्म कोई मनमानी साधना करे, आप 1,000 दिन में उससे आगे पहुंच जाएंगे। कोई 10 साल करे, आपके 10 सप्ताह उससे आगे की खबर देंगे, ऐसा साधन बता रहा हूं। एक 1.25 मिनट श्वास रोका, ये जब हुआ, फिर श्वास छोड़ दिया, फिर स्वाभाविक श्वास चल ले 2, 5, 10, फिर श्वास आपने बाहर फेंक दिया और मन में शांति से जबा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत पीरा। एक बार श्वास अंदर रोका, एक बार बाहर रोका, दोनों मिलाकर 1 प्राणायाम हुआ। ऐसे आप 10 प्राणायाम कल कर लीजिए, और उतना समय सूर्य के किरणों में आपका शरीर स्नान करे, ऐसे ढंग से रहिए तो और अच्छा। ये आरोग्य की रक्षा के लिए समझो, रक्षा कवच बना लेना। नासे रोग हरे सब पीरा प्राणायाम, श्वास अंदर रख के जपने से, बाहर रख के जपने से ऐसे ऐसे फायदे हुए कि उनका मैं वर्णन करूंगा, नहीं तो भगवान की कथा रह जाएगी। आप इसका फायदा उठाना, तो थोड़ी देर आरोग्य का कवच बना लेना और फिर वही अपना साधन में लग जाना। कर्म की प्रधानता वाले बोलते हैं कि कोई कैसा भी चतुर हो, लेकिन जब तक भाग्य में नहीं होता तब तक वो ऊंची अवस्था नहीं मिलती। और प्रारब्ध पुरुषार्थवादी ग्रंथ पढ़ो तो बोलते हैं कि पुरुषार्थ ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर है। पहले का पुरुषार्थ अभी प्रारब्ध है, और अभी का पुरुषार्थ पहले के प्रारब्ध से भी थोड़ा छुटकारा करा सकता है। आज शांति से इतने सारे लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनना। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संचित कर्म, कई जन्मों के संचित कर्मों के ढेर में से कुछ कर्म लेकर शुभाशुभ उससे हमारा शरीर बना। जो शरीर बना वो हो गया प्रारब्ध, और प्रारब्ध शरीर की यात्रा होते होते कोई अमीर के घर पैदा होता है, कोई गरीब के घर पैदा होता है। तो मानना पड़ेगा कि प्रारब्ध तो अपनी जगह पर है, लेकिन पुरुषार्थ का भी महत्व है। पुरुषार्थ के महत्व को आप नकार नहीं सकते, लेकिन पुरुषार्थ कितना भी करो अगर प्रारब्ध तीव्र है तो बुद्धि ही ऐसी देता है कि उल्टा पुरुषार्थ कर दे। इसलिए पुरुषार्थ की जगह पर पुरुषार्थ है, प्रारब्ध की जगह पर प्रारब्ध है, लेकिन इन दोनों के थपेड़े में आयुष्य तो तुम्हारी नष्ट होती है। गंदा प्रारब्ध है तो दुख भुगाता है, अच्छा प्रारब्ध है तो सुख भुगाता है। लेकिन आप पुरुषार्थ करते हैं तो सुख भी मिलता है, गंदे प्रारब्ध का दुख कम हो जाता है, थोड़ा राहत मिल जाती है। लेकिन एक तीसरा विभाग है कि आप पुरुषार्थ करें दुख को भगाने का, सुख को टिकाने का, लेकिन सुख सदा टिकता नहीं, ये बिल्कुल पक्की बात है, और दुख सदा के लिए मिटता नहीं। बुढ़ापा आ जाता और मौत आकर खड़ा हो जाता है। जीवन भर जिन रुपयों को, पैसों को, इज्जत आबरू को, शरीर को संभाला था, सबसे बड़ा दुख का दिवस कौन सा, काला दिवस कौन सा कि हम जीना चाहें और मरना पड़ता हो। इससे बड़ी व्यवस्था क्या है, हम बोलना चाहें और गला रुक गया हो, पुत्र परिवार से मिले रहना चाहें लेकिन जबरन जाना पड़ता हो, नींद की इच्छा हो और अब मृत्यु के क्षणों में नींद भी चली गई, भूख भी चली गई, ये सब काले दिन भी आते हैं। इसको प्रारब्ध कहो। क्रियमाण तो एक होता है संचित कर्म, उससे कुछ मिला वो हो गया प्रारब्ध कर्म, और प्रारब्ध कर्म से आप जो कर्म नए कर रहे हैं वो होते हैं क्रियमाण कर्म। अब क्रियमाण कर्म आप सुख के लिए सुखदायी करो, दुखदायी करो, मिश्रित करो, तो फिर ऐसे ऐसे जन्मों में जाना होता है। ये सब जैसे कंप्यूटराइज सिस्टम से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम होता है, ऐसे ईश्वर की नियति बोलो, कंप्यूटराइज बोलना बहुत हल्की बात है, नियति में होता रहता है। एक एक आदमी के पीछे कोई एक व्यक्ति या एक ईश्वर लगा नहीं रहता कि अब इसका ऐसा करो ऐसा करो, जैसा कर्म करते हैं ऐसा इसी प्रकार का व्यवस्था होती है, स्फूर्ण होता है और आगे की यात्रा होती है। मैं मानो बहुत कामी व्यक्ति है तो मरने के बाद बकरा, खरगोश, भूंड अथवा जहां भी काम वासना पूरी होती हो उसी शरीर में प्रकृति भेज देगी। चटोरा है मछली और उसी प्रकार के शरीर में आएगा। भगवान के प्रति सद्भाव है और भगवत भक्ति है तो भगवान के धाम में जाएगा। सुख वैभव भोगने की इच्छा है तो इंद्रलोक में आदि में जाएगा, लेकिन उस प्रकार का पुरुषार्थ हो तो वे भी कर्म भोग कर फिर गिरेगा और किसी के गर्भ में आएगा। तीसरा एक उपाय है कि प्रारब्ध से जो हो रहा है उसको बदलने वाला, बीतने वाला मान ले, वर्तमान में पुरुषार्थ करे, लेकिन संसारी सुख भोग की इच्छा छोड़कर दूसरों को सुख देने की, मान बढ़ाने की अपेक्षा दूसरों को मान देने की भावना से आप अमानी रहकर ईश्वर की शांति में, ईश्वर के ज्ञान में, ईश्वर की उदारता में, ईश्वर की प्रेम प्रसादी में प्रवेश के लिए कर्म करें, भजन करें, ध्यान करें, तो जिस उद्देश्य से आप वर्तमान पुरुषार्थ करते हैं देर सवेर उस ऊंचाई को आप पहुंच जाते हैं। ये आपके हाथ की बात है। कर्म का फल यही कि सुख चाहो, स्वर्ग का सुख चाहो तो देर सवेर मिलेगा, लेकिन आड़े कर्म करेंगे तो उसके बदले में दुख भी मिलेगा। दुख गंदे कर्म दुख देके चले जाएंगे, अच्छे कर्म सुख देके चले जाएंगे आपका, तो फिर वही मजूरी चालू रहा। लेकिन कर्म अच्छे करो ठीक है, लेकिन अच्छे कर्म का फल सुख भोग की इच्छा न रखो, सुख स्वरूप ईश्वर में शांति पाओ। तो ये संसारी शांति भोक्ता को क्षीण कर देती है, लेकिन संसारी सुख भोक्ता को क्षीण कर देते हैं। संसारी सुख का ठीक सदुपयोग कर लिया और बाकी का सुख स्वरूप भगवान का चिंतन, ध्यान और भगवान के नाते सेवा कार्य किया, तो आपके हृदय में भगवत शांति आने लगेगी, जिससे बुद्धि में भगवत शक्तियां आएगी। जैसे बलराम दास महाराज हो गए, जगन्नाथ जी को जाकर आलिंगन करने लगे, बाल्यकाल में ब्राह्मणों ने मार के भगा दिया और भाग के समुद्र किनारे गए और जगन्नाथ जी की मूर्ति मानसिक बनाकर रथ बनाकर प्रभु मैं शूद्र जाति को मेरे में कुछ भी नहीं लेकिन मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरे हो प्रार्थना करके डूब गया तो वहाँ रथ चलने से रुक गया और राजा को स्वप्न आया कि भक्त का अपमान हुआ इसलिए तुम्हारा ये रथ रुका हुआ है जाओ उसको मना के आओ। राजा उसको मना कर ले गया ठाकुर जी के रथ पर चढ़ा और प्रणाम किया उतरा बाद में रथ चला। तो आप जब भगवान के साथ अपने मैं को मिला देते जैसे कंगला कुछ मेहनत करे और करोड़पति होना चाहे तो उसके लिए बहुत समय लगेगा। दूसरी युक्ति की कोई अपोता है करोड़पति और उसकी गोद चले गए तो उसी समय वो करोड़पति अरबपति हो गया। ऐसे आप भगवान की गोद जाना सीखें। रात को सोते समय श्वास अंदर जाए भगवान का नाम बाहर आए तो गिनती ऐसे करते करते भगवान की गोद में शांति। सुबह भगवान की गोद से उठे हैं और सुख दुख को स्वप्न मानेंगे परमात्मा तुमको अपना मानेंगे। संसार की कोई भी पद प्रतिष्ठा के लिए हम बेईमानी दगाबाजी अथवा गरीबों की आह या गरीबों का शोषण न हो ऐसा ध्यान रखें ऐसा सद्बुद्धि देना। सुख बांटने की चीजें और दुख पैरों तले कुचलकर दुखहारी भगवान की प्राप्ति के लिए आता है ये ज्ञान बना रहे ऐसा संकल्प करके आप बिस्तर त्यागिए। सूर्य के किरणों में 18 मिनट आपका शरीर स्नान करें। तांबे के लोटे में पड़ा हुआ पानी सुबह जल पान करें। तुलसी के 7 पत्ते 5 पत्ते चबाकर खा ले इतवार को नहीं बाकी दिन तो पेट की तकलीफें और कैंसर तुम्हारे नजदीक नहीं आए। इस प्रकार कई सात्विक प्रयोगों से आप स्वस्थ रहिए सुखी रहिए और सुखदाता भगवान को अपना अपने को भगवान का मानकर भजन करेंगे तो जल्दी बरकत आएगी। और अधिक 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 जप करते करते कईयों की आदत होती है तो फिर जप छूटता ही नहीं तो मानसिक रोग बन जाएगा। जप के समय जब ध्यान के समय ध्यान तो जप निरर्थक विचार निरर्थक वाणी से जप 1000 गुना अच्छा है लेकिन जप के आगे जप का अर्थ है और जप के अर्थ के आगे जप के फल स्वरूप परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा की विश्रांति है। तो संसारी रस से हजारों लाखों गुना ऊंचा है भगवत रस और भगवत रस का अभ्यास बढ़ जाए और गुरु दीक्षा की कुंजी लग जाए तो भगवत तत्व में विश्रांति योग हो जाए स्थाई रस। और स्थाई रस को भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आप खर्चते रहेंगे तो आपके अंदर नित्य नवीन रस उभरता रहेगा। आपको विद्वता के लिए पोथे नहीं पढ़ने पड़ेंगे उस भगवत रस से भी आपकी वाणी विद्वानों को भी चकित कर दे ऐसी हो जाएगी। स्वास्थ्य के लिए आपको टॉनिक की शरण नहीं लेने जाने पड़ेगी आपका अंतरात्मा का रस आपको स्वास्थ्य बरकरार रखेगा। खुशी के लिए आपको क्लबों में वाइन की बोतलों में अथवा नाच गानों में अथवा किसी महफिल में जाने की गुलामी नहीं पड़ेगी। तुम जहां जाओगे और मीठी नजर डालोगे तो हजारों लोगों को सुख शांति और आनंद आने लगेगा ऐसा परमात्मा रस तुम्हारे जीवन में जागृत हो। एकनाथ महाराज ने ठाकुर जी से ही पूछा माजा विठल माजा पांडुरंगा तुम्हारी शरण के बिना कहीं सुख शांति नहीं लेकिन तुम्हारी शरण कहाँ है? क्या मूर्ति के पैर पकड़ना तुम्हारी शरण है? मुंड मुंडाकर साधु बनना तुम्हारी शरण है? जटा बढ़ाना तुम्हारी शरण है अथवा गृहस्थी के फंदे में पड़े रहना तुम्हारी शरण है? तुम्हारी शरण कहाँ है तुम ही बताओ देव। देव तुम ही सांगा तुम्हारी शरण कुटिया शांत होते गए होते गए होते गए इंद्रियां मन में मन बुद्धि में बुद्धि बुद्धि दाता में विश्रांति पाई अंतरात्मा की अनुभूति हुई कि जहां से स्फुरना उठता है जहां से संकल्प उठ उठ कर बदल जाते पहले फुरने होते उस फुरने में आप सतबुद्धि डालते तब वो संकल्प बनते और संकल्प को पकड़ते उसके अनुकूल हुआ तो सुखी होते और प्रतिकूल हुआ तो दुखी होते। लेकिन प्रतिकूलता भी नहीं रहती अनुकूलता भी नहीं रहती लेकिन बेवकूफी कई जन्मों तक भटकाती है। आप संकल्प की शरण न जाकर भगवान की शरण जाओ तो वे संकल्प भगवताकार वृत्ति के होकर अज्ञान मिटा देंगे तुम्हारे और भगवान के बीच की नासमझी हटाकर साक्षात्कार करा देंगे। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष गुरुवर
कार्य रहे ना शेष
मोह कभी ना
थक सके इच्छा नहीं।